अब हम कहीं जाने वाले हैं यूसुफ भाई,
सुभानअल्लाह,
मंडी जाने वाले हैं।
ये बज़ाहिर बेज़बान है लेकिन आपके प्यार करने को ये भी समझते हैं।
आपको बहुत ही मुबारक हो, आपको खैर मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह।
इन्होंने कसाब हजरत की बात की, हमारे साथ बुजुर्ग कसाब मौजूद है।
नाम का तो वकील हूँ,
अच्छा,
लेकिन पेशा मेरा गोश्त फरोश है।
अच्छा, इसलिए आपने कहा कि मुझे देख लें।
मैंने कहा मुझे देख लें।
अच्छा, तो मैं, आपने भैंसों का दूध पिया है?
भैंस के दूध पीने की वजह से मैं
खालिस दूध। ईद के तीसरे दिन ऊँट की कुर्बानी है।
सुभान अल्लाह, मदनी चैनल पे लाइव देखेंगे इंशाल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شہزاد بھائی؟
الحمدللہ ٹھیک ہیں۔
الحمدللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت؟ الحمدللہ۔
آج پھر کیا کہیں گے، دوبارہ آ گئے ہم
مدنی چینل کے ناظرین عید اسپیشل پروگرام آپ نے کیا دیکھا ہے لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ عید کا تیسرا دن ہے، سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین آج کے دن ہم آپ کو بہت کچھ دکھانے جا رہے ہیں، جیسا کہ پہلے
دکھا چکے ہیں۔
کیا کیا دکھایا؟
پہلے کے سیگمنٹ میں ہم نے دکھایا تھا مویشی منڈی، ایک پہلا سیگمنٹ تھا، دوسرا سیگمنٹ تھا کیٹل فارم، اور تیسرا سیگمنٹ تھا بزرگ قصاب۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی نئے نئے سیگمنٹ ہوں گے، انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی، نئے نئے بزرگ ہوں گے، نئی باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
کیا کیا دکھانے جا رہے ہیں ہم؟
وہ تو ہم ابھی تھوڑی دیر بعد بتائیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے شعر یاد آ رہا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید کا تیسرا دن ہے، امید ہے کہ آپ لوگ قربانی کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے، اور اب باربیکیو اور بوٹیاں کھانے کے سلسلے پہ زور ہوگا نا،
اور کھایا بھی جا رہا ہوگا شاید،
ہو سکتا ہے کھاتے کھاتے دیکھ رہے ہو۔
امید ہے، کیوں کہہ رہے ہیں ہم، جس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں، آن ایئر ہو رہا ہے اس وقت، ہے نا، یقیناً قربانی کر چکے، بوٹیاں بن چکی، ڈشز بن چکی، مزید بنے گی،
اور سلسلہ بھی چلے گا انشاءاللہ۔
جی
مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے پہلے دن ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا، امید ہے کہ لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے، اور آج بھی ہم آپ کو اسی طرح کے سیگمنٹس دکھانے کی طرف جائیں گے جو انشاءاللہ علم دین کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہوں گے، آپ کو بہت ساری دینی منفعت یعنی کہ دین کے حوالے سے معلومات بھی ملے گی، آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ معلومات ملے گی، جو تجربے آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں دیکھے انشاءاللہ آج بھی اسی طرح کے تجربات بزرگوں سے حاصل کریں گے۔
مدنی چینل کے ناظرین، یوسف بھائی نے کچھ باتیں بتائی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ ہے نا، جیسے ڈشز مزیدار اور چٹپٹی ہوں گی نا، تو کچھ بزرگوں سے مزیدار اور چٹپٹی باتیں بھی ہوں گی، اور کچھ نئے سیگمنٹ بھی ہوں گے، اور وہ نئے سیگمنٹ کیا ہوں گے، کیا ہوں گے
وہ سیگمنٹس، انشاءاللہ آپ کو وقت پر بتائیں گے کیا کیا ہوں گے۔
جی ابھی نہیں بتائیں گے، اور ابھی ہم، آپ بیٹھ کیوں گئے ہیں
سر؟ کیوں؟
اس میں سیگمنٹ ہے، تو یوسف بھائی سیگمنٹ کے لیے بیٹھنا نہیں ہے، جانا ہے
اگلے سیگمنٹ کی طرف، جانا ہے
اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے، اور ہمیں بھی جانا ہے، تو آئیے تشریف لائیے۔
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عید
کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟
میں سوچ رہا ہوں کہ آپ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟
دیکھیں عید کا تیسرا دن ہے
الحمدللہ،
ٹھیک ہے، اور تیسرے دن میں آپ نے پہلے دن بھی بقرعید کا منایا، دوسرا بھی منایا، تیسرا بھی منایا، تو کھایا پیا ہوگا، گوشت کھایا ہوگا، چلا چلا کے لے کے کہاں جا رہے ہیں وہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہے نا آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے۔
سبحان اللہ،
اور یہ سیگمنٹ بھی ہے نا ایسا ہی ہے جو آپ بزرگوں سے اور مجھ جوان سے ریلیٹڈ بھی ہے۔
کیا بات،
میں آپ کچھ مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے۔
تو ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے الحمد للہ آپ کو کئی سیگمنٹ پیچھے دکھائے، اور آج عید کے تیسرے دن ہم آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
آپ نے کیا دیکھا عید اسپیشل پروگرام میں، اور ہمارا یہ سمجھ لیں کہ دوسرا پروگرام ہے، और उम्मीद है पहला प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और हमारा ये दूसरा प्रोग्राम जो है ना, ये भी मुख्तलिफ सेगमेंट पे डिपेंड करता है। और अब जो सेगमेंट है ना, उसका नाम है बुजुर्गों की सेहत।
बुजुर्गों की सेहत के लिए, बुजुर्गों को महफूज रहने के लिए और अपने आप को देर पर रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों के बारे में एहतियात करनी चाहिए, हम इंशाल्लाह कुछ सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे, कुछ हमारे हकीम साहब अपने तजुर्बे का इजहार करेंगे। दोनों बुजुर्ग हैं, इनके लाइफ का एक हिस्सा अपने शोबे में गुजरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सेगमेंट लेके इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप तक वो मालूमात पहुंचाएं कि हमें ईद के दिन खाने पीने से कोई मना नहीं कर रहा, हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, कहीं कुर्बानी हुई तो कोई कलेजे खा रहा है। जनाब अपने गुफ्तगू का आगाज करते हैं डॉक्टर साहब के साथ और हकीम साहब के साथ। शहजाद भाई गुफ्तगू शुरू करते हैं इंशाल्लाह।
जी, ईद उल अज़हा के मौके पर एक सवाल रेज करूंगा दोनों हजरात से, पहले डॉक्टर साहब जवाब देंगे फिर हकीम साहब दे दें कि ईद उल अज़हा के दिनों में बुजुर्ग हजरात को गोश्त खाने में सबसे ज़्यादा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
हर शख्स को पता होता है अपने, यानी हर शख्स की भूख अलग होती है कि, तो उसके हिसाब को वो रखे, जहन में रखे कि मैं कितना खाना है उतना खाए, मतलब उससे बहुत ज़्यादा नहीं खाए कि बाद में मोशन उल्टियाँ कुछ हो रहे हैं या और तबीयत ख़राब हो रही है उसकी, तो गोश्त खाना मना नहीं। गोश्त इतना खाया जाए जो कि हमें अंदाज़ा कि हम हज़म कर सकें, साथ में उसके फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे कि जो बस हम रोटी खाएं तो वो जो लाल आटे की रोटी होती है वो खाना बेहतर है, उसके बजाय कि हम नान खाएं, मतलब उसके कि वो फाइबर। और नंबर टू, सलाद का साथ में इस्तेमाल रखें, सलाद है, फ्रूट है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये फाइबर जब गोश्त के साथ जाएगा पेट में तो वो जल्दी हज़म होगा।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो अमल किए हमारे लिए, ठीक है ना, उसको पेश नज़र रखा जाए।
जी हाँ, ऐसे ही है, सेहत को बीमारी से पहले गरीमत जाने, ये उसी सूरत में रहेगा कि जब हम एतदाल पर रहेंगे। गोश्त हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, आप दाल ज़्यादा खा लें आप होंगे वाशरूम होगा,
ऐसे ही भी नुकसान देगी,
वो भी नुकसानदेह। कोई भी चीज़ एतदाल से ऊपर होगी वो नुकसानदेह, उससे नीचे जाएगी तो वो आपकी सेहत ख़राब कर देगी। जैसे इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फलों का सीज़न चल रहा है, मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा अपने इस प्रोग्राम के तफसल से कि फालसे का वक्त है, अगर आपके कुछ बदहज़मी का सिलसिला होता है या गोश्त आपने ज़्यादा खा लिया है, खाना नहीं चाहिए, फालसा है उसका थोड़ा सा शरबत पी लें। अच्छा। फालसा डायरेक्ट खा लें आप, तो ये आपकी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है।
इन बुज़ुर्गों की सेहत के बारे में मज़ीद हकीम साहब की तरफ आऊँगा। हकीम साहब, ये जो कभी बदहज़मी हो जाती है और जनाब वो ज़्यादा खा लिया, हो जाता है उमूमन ईद के दिन, इंसान चाहता है कि मैं एहतियात करूं लेकिन वो डिशेज ऐसे सामने आ जाती हैं कि इंसान से रुका नहीं जाता। चलो जी, रुक ना सका, अब उसको बदहजमी का जो इशू आया, अब वो घर में चूरन चारन खाना शुरू कर देते हैं, क्या करना चाहिए? वो घर में अपने आप को डॉक्टर या घर में जैसे डॉक्टर साहब ने घर में ही मौजूद हर तरह के डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करता है, उसको ये अमल करना चाहिए या बाकायदा तौर पर आप तक पहुँचे और अपना इलाज करवाए, प्लीज़।
असल में पहली बात तो यही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इतना ना खाया जाए कि ऐसी नौबत आ जाए। बिलफर्ज अगर कुछ ऐसी गलती हो गई है, अगर सिर्फ मतली तक कंडीशन है तो फिर तो थोड़ा सा एहतियात रखें, थोड़ी देर रुके। अगर उल्टियां हो गई हैं शुरू या खुदा न खास्ता मोशन शुरू हो गए तो फिर जो फाजिल मादा है, ख़राब चीज़ पेट में मौजूद है, अब उसको निकलने दें, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं।
जी जी, ऐसे ही।
अब मुसीबत एक और भी है शहजाद भाई, हमारे माशरे में क्या है कि हम खा खा के हम अपना पेट ख़राब करते हैं और फिर सामने पूछते हैं यार खाने की कोई चीज़ बताएं कि पेट सही हो जाए।
अल्लाह हू अकबर।
अच्छा।
अगर हम दो वक्त का खाना रोक दें हमारा पेट वैसे ही सही हो जाएगा।
ओके ओके,
सही। हमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी हकीम डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
खाने का रुकने की बात कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं।
मैं तो सेहत बचाना
दो टाइम रुकने का कह रहे हैं,
मैं जान बचाना चाह रहा हूँ।
अच्छा
अच्छा,
क्योंकि फर्स्ट हमारी जो कोशिश है बतौर हकीम और बतौर डॉक्टर, वो सामने वाले की जान बचाना।
जान बचेगी तो थोड़ा बहुत फिर खा सकेंगे ना, वरना तो
खा लेंगे फिर।
जी हाँ, अब अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो उसका एक सादा सा हल ये है कि आप जोशांदा बना लें, थोड़ा सा ताज़ा पुदीना ले लें, एक चम्मच सौंफ ले लें और एक छोटी इलायची ले लें, उसको दो कप पानी में डाल दें पतीली के अंदर, उसको इतना पकाएं हल्की आंच पर कि तीन हिस्से पानी जल जाए उसका, जब चौथा हिस्से पानी रह जाए तो उसको जोशांदे की तरह छानकर वो पी लीजिए, انشاءاللہ وقتی طور پہ جو آپ کو بدہضمی ہوئی ہے یا سینے میں جلن ہوئی ہے یا پیٹ بھاری ہوا ہے انشاءاللہ اس سے آسانی ہو جائے گی۔
مدنی چینل کے ناظرین اور میرے مہمان دونوں سے میں عرض کروں گا، بالخصوص آپ لوگوں سے عرض کروں گا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس کے طریقے سے استعمال کریں گے نا، اس کے آپ فائدے اٹھائیں گے۔ یہ برکتوں والے دن ہیں، یہ بڑے مقدس دن ہیں، اس میں جہاں آپ کھانے پینے پہ توجہ دے رہے ہیں بالکل دیجئے، ہم نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، سب نے کھایا، لیکن ایک تو کھانے کے معاملے میں احتیاط رکھنے کے لیے ہم نے ان ڈاکٹرز کو، حکیم کو جمع کیا کہ ہمیں کیا احتیاط کر لینی چاہیے۔ اس کا بالکل مقصد یہ نہیں آپ یہ سوچیں گے ہم پابندی لگا رہے ہیں، پابندی لگا رہے ہیں زیادہ کھانے پر، پابندی لگا رہے ہیں کہیں بیمار نہ ہو جائیں، پابندی لگا رہے ہیں اس بات پر کہ کہیں یہی فائدے مند گوشت آپ کے لیے باعث نقصان نہ بن جائے۔ شہزاد بھائی
جی ماشاءاللہ بہت اچھے گفتگو فرمائی یوسف بھائی نے، اور اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، اور جانے سے پہلے ایک بات کہوں گا میں، نیکسٹ سیگمنٹ بھی ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور مزے دار ہے، اور
وہ سیگمنٹ حسب دستور آپ بتائیں گے نہیں کون سا ہے وہ؟
نہیں میں
ایسا ہی ہے،
نہیں نہیں میں نہیں بتاؤں گا ابھی،
اللہ اکبر،
وہ وہاں پر بتائیں گے جہاں پہ سیگمنٹ ہوگا۔ ایک بات کہتا جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ نا، جوانی کو ہے نا بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے۔ اپنی جان کو، اپنی صحت کو ایک بہت اہمیت دیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے،
تو جہان ہے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ تک ہمارا انتظار کیجئے، پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عید مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم حاضر ہیں پروگرام آپ نے کیا دیکھا ہے میں، اور یہ عید اسپیشل پروگرام ہے۔ آپ نے کئی سیگمنٹ عید کے پہلے دن بھی دیکھے، اور آج عید کا تیسرا دن ہے، خوشیوں بھرے لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات الحمدللہ رب العالمین اپنے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری صاحب سے کروائیں گے۔ ان کی زندگی میں عید قربان کے حوالے سے وقت با وقت جو جو حالات گزرے اس کے بارے میں ڈسکس ہوگی۔
حاجی امین صاحب کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے، لیکن سیگمنٹ کا نام اناؤنس نہیں کیا، تو میں یہ دیتا ہوں کہ ماضی کی عیدیں۔ حاجی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔
آپ سب کو بھی عید مبارک، خیر مبارک۔
میری طرف سے آپ کو عید مبارک ہو،
خیر مبارک۔
اللہ آپ کو ایسی کئی عیدیں دیکھنے نصیب فرمائے، آئندہ سے اللہ کرے کہ ہمارے حاجی صاحب مکہ مدینے میں عید دیکھیں، حج مبرور کی سعادت پائیں ماشاءاللہ۔
اچھا حاجی صاحب، دعوت اسلامی کے ابتدائی دنوں میں قربانیوں کا ماحول کیسا ہوتا تھا، جب آپ ماحول میں آئے یا پھر گریجولی جب کام شروع کیا؟
دیکھیں ہم جب ماحول میں آئے نا، تو ظاہر ہے دعوت اسلامی چونکہ ایک دینی تحریک ہے، اور اللہ پاک نے امیر علیہ سنت کو جو منصب اور مقام عطا کیا نا، وہ ایک چیز کا یہ ضرور خاصہ ہے کہ آپ نے علم دین جو ہے وہ پھیلایا۔
بے شک ایسا ہی،
تو ظاہر ہے یہ ایک مذہبی تہوار ہے، اور سچی بات ہے کہ جب ماحول میں نہیں تھے تو ٹھیک ہے، بکری تو آتی تھی گزر جاتی تھی، قربانیاں بھی ہوتی تھیں گزر جاتی تھیں، مگر اس قربانی کی جو اصل روح ہے اور جو اس کے مقاصد ہیں، پھر کس کس سینریوں میں کس پر قربانی واجب ہوتی ہے، پھر کیسے قربانی کا معاملات کرتے ہیں، تو یہ سب دعوت اسلامی نے ایک سلسلہ دیا۔ دیکھیں ماحول سے پہلے میں چونکہ بلونگ حیدرآباد سے کرتا تھا، تو وہاں پر بھی ہماری قربانی تو ہوتی تھی، لیکن اس وقت کوئی یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ کس پر واجب ہے تو کس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک تصور ہے کہ ایک چھری ہوتی تھی، اس پہ وہ جن سے اس کا حصہ ہوتا تھا نا، ہمارے یہاں چھری پہ ہاتھ رکھتے تھے، وہ ہاتھ رکھ رکھ کے مطلب یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھائی سات حصے ہیں، تو یہ جس نے ہاتھ رکھا ہے نا، جس کا حصہ ہے تو وہ چھری پہ ہاتھ رکھتا تھا،
رکھنا لازمی ہوتا تھا۔
اب یہ جتنا وہ جو کانسیپٹ یاد ہے کہ وہ ہاتھ رکھتے تھے اور جانور آتا تھا، یہ بھی یاد ہے،
لیکن ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ بات ایسی ہے،
لیکن وہ مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ اب تو خیر باقاعدہ اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے نا کہ بھائی قربانی واجب ہے تو اتنی رقم ہونی چاہیے، تو بالغ ہے، اور پھر گھر کا ایک ماحول بنتا ہے بھائی کس کس پر ہے،
جی جی،
تو ایسا مطلب چونکہ مذہبی ماحول تو تھا گھر ہمارے خاندان میں، اور الحمدللہ قربانی بھی ہوتی تھی، اور جنرلی اپنے رشتہ داروں میں بھی قربانی کا ایک ماحول دیکھا تھا، لیکن یہ کہ وہ قربانی جو آج گہما گہمی ہے ایک ماہو اس کی برکتیں جو ہیں ظاہر ہوتی ہیں ویسی نہیں تھی لیکن قربانی ہوتی تھی اور ظاہر گوشت بھی کٹتا تھا لیکن وہ چونکہ ہمارا گھر تھوڑا سا اونچائی پر تھا تو مجھے یاد ہے وہ جو بڑا جانور ہوتا تھا وہ اوپر چڑھا کے لاتے تھے شہن میں کٹتا تھا پھر اس کے ایک الگ رنگ برنگے وہ ماحول ہوتے تھے کہ کبھی کیسا جانور آیا کبھی کیسا آیا کبھی وہ پاؤں پر آیا تو کبھی گدھا گاڑی میں رکھ کر گائے کو لے کر آئے تو وہ ایک عجیب اس کا ایک
گدھا
گاڑی میں
اچھا
وہ بھی یاد ہے مجھے
سب یہ جانور جو گدھا گاڑی میں اس کو پیچھے باندھ کے لاتے ہوں گے نا
باندھ کے
وہ ساتھ ساتھ گاڑی کو نہیں نہیں
اوپر ہی بٹھایا تھا مجھے ایک جانور تو یاد ہے جو اٹھا کر گاڑی میں اوپر رکھ کر باندھ کر لائے تھے
یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ماشاء اللہ جو آپ کا ایک تجربہ رہا وہ ایک گھر کی حد تک رہا لیکن جب اللہ نے آپ کو سعادت دی اور آپ اس مدنی ماحول سے منسلک ہوئے ذرا زندگی میں چینجنگ تو آئی نا اب اس سے پہلے تو خالی قربانی کیا کرتے تھے اپنی کھال کسی کو دے دیتے ہوں گے ظاہر ہے اب ماحول میں آنے کے بعد کیا رہا کہ کچھ کھالے جمع کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہمیں دیا گیا اس پہ روشنی فرمایا نا کہ ہم کیا ایک حالات تھے کیا گزرا اس وقت میں ذرا آج جو آپ کی مصروفیت ہے وہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو استقامت دے مزید جنہ کے ناظرین میں بیان نہیں کر سکتا کہ ماشاء اللہ کتنی محنت ہے کتنا وقت کس کو دینا ہے کس کے پاس جانا ہے کہاں پہ دورہ کرنا ہے کس کو دیکھنا ہے کس کا فون ریسیو آسان کام نہیں ہے یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرشد پاک کے صدقے میں ان پہ عنایت ہے ماشاء اللہ لیکن اس دور میں جب یہ نئے نئے ماحول میں آئے تو حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا کھالے اٹھانے کا موقع ملا
جی بالکل بالکل چونکہ کھالے جمع ہونا شروع ہو گئی تھی داؤد صاحب کی بالکل اسٹارٹ سے تو کھالے نہیں تھی لیکن میں جب 91 سے سمجھ لے کہ میں نے کھالوں میں ماحول دیکھا تھا اور چونکہ شروع سے ہی ہمارے کچھ ایسے ذمہ داران تھے کہ جو اس معاملے میں مطلب پوری اپنی توجہ دیتے تھے
جی
تو ماشاء اللہ ایک شروع سے روٹین دیکھا تھا جیسے نگران شرف کبھی فرماتے ہیں نا کہ لسٹیں بنانا اور کھالیں بک کرنا
جی
پھر کھالوں کے لیے کوشش کرنا
جی
چونکہ اس ٹائم مدارس بھی شروع ہو چکے تھے دعوت اسلامی کے تھے 91 سے
جی
مدارس المدینہ کا بھی آغاز ہو چکا تھا تو یوں مطلب ایک شوق بڑھ گیا تھا تو یوں دعوت اسلامی کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کھالوں کی ضرورت ہوتی تھی تو چونکہ ہم عوامی کام ہی کرتے تھے 12 دینی کام تو اس ٹائم نام نہیں تھا لیکن جو دینی کام تھے علاقائی دورے پھر مسعود بالغان تو یہ سب ایسا ماحول تھا کہ جس سے عوامی ہمارا تعلق جڑ گیا تھا تو الحمدللہ کھالے جمع کرنے کا شروع سے ہی میں نے ماحول دیکھا تھا اور جو کہ پرانے اسلامی بھائی جس انداز سے کرتے تھے انفرادی کوشش بکنگ کرنا
موٹر سائیکل ہوتی ہوگی
50 میرے اس ٹائم 50
رکھتے ہوں گے
میں نے تو مختلف بائکیں چلائی ہیں تو ہر بائک پہ ٹریل پہ بھی کھالے جمع کیے ہیں ویسپا پہ بھی جمع کیے ہیں 50 پہ بھی جمع کیے ہیں تو ہر قسم کی موٹر سائیکلیں چلائی ہیں تو سب پہ جمع کی بلکہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات عرض کروں دیکھیں داؤد اسلامی کے ماحول کی ایک برکت کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے ابھی حالی انتقال ہوا حافظ رفیق صاحب تو وہ بڑی حکمت عملی سے نا بکنگ کرتے تھے جیسے مدینہ منزل ہے اب کسی بلڈنگ کا نام مدینہ منزل ہے تو ان کے وہ فلیٹ سسٹم سے لکھا ہوتا ہے کہ فلیٹ نمبر 1 میں حاجی عبدالغفار رہتے ہیں اچھا 88 میں انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی ہم کھال نہیں دیں گے پھر 89 میں گئے تو پھر لکھا ہوتا تھا کہ 89 میں انہوں نے کہا کہ یار وہ ہماری جماعت کے لیے جاتی ہے تو معذرت پھر وہ 90 میں گئے تو 90 میں انہوں نے کہا کہ جماعت والے لے جاتے ہیں لیکن اگر نہیں لے گئے تو آپ لے جانا پھر 91 میں گئے یعنی 4-5 سال کے مسلسل رابطے کے بعد 91-92 سے کھالے ہماری طرف ہو گئے کہ مطلب یہ مطلب کوئی بھی نہیں آتا تھا بھائی اب آپ لوگ لے جائیں کیونکہ ظاہر ہے جب دعوت اسلامی نے اپنی خدمات دی اور بچوں کو ان کے مدرسے پڑھائے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ دین کی جو دعوت دے رہے ہیں تو ان کا جو اپنا ایک سیٹ اپ بن رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے تو پھر تو سب نے دل و جان سے الحمدللہ تعاون کیا ہی ہے
اور آج تیسرا دن ہے تو ہے نا کھالے تو الحمدللہ بہت محنت کی اسلامی بھائی نے جمع ہوئی بھی ہیں اور نیکسٹ ایئر بھی اس سے زیادہ اچھی محنت کرنی چاہیے کبھی آپ کو مطلب ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا کوئی واقعہ پیش آیا کہ نا آپ ہے نا کھال لینے گئے ہوں अवाइल में तो इतने कोई जानते नहीं थे, तो वो आपको मतलब है ना, जैसे नहीं चंदे शुरू में चंदा लेने जाते तो बोले माफ़ करो,
बाज़ औक़ात तो धमकियों का सामना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस बहुत होती थी। यानी एक खाल पर जो ना अगर मुबालगा करूँ तो 8 से 10 दफ़ा भी जाते थे।
अच्छा,
बार 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 बार, क्योंकि खाल जो है ना वो बुक करना भी कमाल नहीं होता है।
सही बात,
खाल उठाना जो है ना ये कमाल है। यानी अगर किसी ने हमसे कमिटमेंट कर लिया तो हमने तो किसी को बिठा ही दिया कि भाई आप खाल तैयार हो जाए तो मुझे कॉल कर देना या मैं आ रहा हूँ वापसी चक्कर लगा के तो ले जाता हूँ, ये इस तरह की बुकिंग भी होती थी। लेकिन बाद हमको ना हाँ करते थे ना ना करते थे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आसरा दिया तो एक बार तो मना ही कर देता। अच्छा, जो मना करता था फिर भी उसके पास बार बार चक्कर लगाना कि शायद इसको आ जाए ख्याल कि चलो मौलाना को दे देते हैं। तो ऐसा तो बहुत रहा है, बहुत रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एक माहौल ने इज्जत दी है तो लोगों का ताउन हमेशा से रहा है भी और रहेगा भी।
भाई सब ईद का तीसरा दिन है तो 2 दिन तो गुजर गए, 2 दिन आपने क्या क्या खाया? पहले दिन भी जाहिर कुर्बानी हुई, फिर है ना बकरे का भी गोश्त आया होगा, बड़े का भी गोश्त आया होगा, दूसरे दिन अभी तीसरे दिन ऊंट की कुर्बानी हुई है, हो सकता है कि आपको यहाँ से गोश्त मिल गया और ट्रांसमिशन आपने देखी होगी तो शाम में जो हुई है, तो क्या क्या खाया, क्या क्या पकाया, कुछ बताएं ना थोड़ा सा। और आप माशाल्लाह से इस उम्र में भी जितने एक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें खा के एक्टिव है या ये सारी चीज़ों से परहेज करके एक्टिव है?
देखिए परहेज का तो बहुत सोचते हैं शहजाद भाई, लेकिन सच्ची बात है परहेज कर नहीं पाता हूँ मैं।
अच्छा,
लेकिन मैं खाता भी नहीं हूँ। यानी एक होता है ना कि आदमी बहुत ज़्यादा खाता हो, तो ऐसा नहीं है।
सही,
खाता हूँ मगर इसकी कोई ऐसा नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा तो उदास हो जाएंगे या नाराज़ हो जाएंगे, बल्कि सच्ची बात है कुर्बानी के जो दिन होते हैं ना, बाद वक्त खालों की ऐसी मसरूफियत होती है कि दोपहर तक में याद आता था यार नाश्ता तो किया नहीं है यार, यानी क्योंकि खेमागेमी ऐसी होती है कि उसमें जब तलबा का क्योंकि जाते हैं जहाँ पर भी, तो सबसे पहली तो यही बात होती है कि जो खाले जमा कर रहे हैं इन्होंने खाया कि नहीं खाया
जी।
तो बाद वक्त खाना उन्होंने नहीं खाया तो मैं किसी पर नाराज़ हुआ कि यार आपने इनका ख्याल नहीं रखा, कुछ खिलाया नहीं है, तो खैर उनका तो इंतज़ाम कर दिया, फिर गाड़ी में जब बैठे तो याद आया यार ख़ुद भी तो नहीं खाया कुछ भी।
अच्छा।
क्योंकि जाहिर है हर जगह जा तो रहे हैं, हर जगह शाबाशियाँ दे रहे हैं, लेकिन वही बात हुई कि बाज़ अवकात नहीं होता एहसास। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो खाने का इतनी वो ज़्यादा नहीं है कि नहीं मिलेगा तो उदास हो जाएंगे, और अगर है भी तो मैं जो तबीयतन अपने आप को फील करता हूँ वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं खा लूँ।
ये तो अभी का बता रहे हैं ना, पहले आप क्या क्या खाते थे माहौल से पहले? और है ना
आप सिर्फ खाने ही पर जोर क्यों दे रहे हैं?
देखें ईद का तीसरा दिन है, लोगों के फ्रिज भरे हुए हैं, डी फ्रीजर भरे हुए हैं, लोगों के पास गोश्त वाफिर मकदार में है, तो हो सकता है कोई ये रेसिपी बता दें, कोई टोटका बता दें कि मैं ज़्यादा खाता हूँ तो ज़्यादा चलता भी हूँ, ज़्यादा खाता हूँ तो कैलोरीज गेन करता हूँ तो उसको बर्न भी करता हूँ, यानी कैलोरीज लेता हूँ तो उसको जलाता
हूँ। ये भी बताना चाहेंगे इंशाल्लाह कि जो मैं ज़्यादा खाता हूँ, अगर खाता हूँ
मेहनत भी ज़्यादा करता हूँ,
मैं दीन के कामों को आगे बढ़ाऊँ, अल्लाह में से राजी हो, नमाजें पढ़ूँ, ये नियत भी आपका सवाल इस तरह का भी बनता हुआ है ना।
नहीं खैर खाने में तो एहतियात ही करनी चाहिए जो अमीर सुन्नत बारहा तरगीब दिलाते हैं, और कई मौक़ों पर एहतियात शुरू भी कर दी हैं, और लेकिन तबीयतन में जैसे बता रहा हूँ ना शुरू से तकरीबन आदत रही है ऐसी कि अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर नहीं मिला तो अपने को निढाल हो गए और मिल गया तो एकदम सुस्त हो गए, तो मिल के खाना खा के भी मसरूफ रहना है, काम
ऐसा
करना।
कोई ऐसा जैसे माशाल्लाह आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कोई वाकया लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ है दावत इस्लामी की, इसमें कोई ऐसा वाकया?
मैं वैसे अपनी ज़ाती जो कुर्बानी है ना, तो चूँकि ईद की मसरूफियत बकरीद की ऐसी होती है कि शायद मुझे एक दो साल तो ऐसे भी याद है कि मैं अपने जानवर भी नहीं देख सका था, तो वो एक होता है अपना जो रूटीन है।
जब देखते थे तो खुद ज़बह कर लेते थे?
नहीं शायद मैं कुर्बानी के टाइम पे तो रहा ही नहीं हूँ अपनी,
कभी अपने भी अपने ज़िबानी की अपने हाथ से जानवर
कुर्बानी तो ज़िबानी की। हाँ हाँ,
डर नहीं लगता था?
नहीं वो हज पे गए थे।
अच्छा,
जब उस 95 में हम चल मदीना का काफिला था और 42 इस्लाम भाई थे और 8 इस्लाम बहनें थी काफिले में अमीर सुन्नत के साथ, तो कुर्बानी के जानवर जो ज़िबा करने की जो टीम थी ना उसमें मैं शामिल था।
अच्छा,
116 बकरे हमें ज़िबा करने थे।
तो आपने कोई इसकी तरबियत वगैरह ली थी क्या?
नहीं नहीं, बस हमारा काफिला तो
बिस्मिल्लाह अल्लाह
हो, तो हम गए थे उसमें मीना में जो स्लॉटर हाउस होता है, तो हम तुम्हें 8-10 इस्लाएँ भेजे थे जो हम गए थे काटने के लिए, तो हमने मिल के ज़िबा किए थे, मेरे ख्याल 10-12 तो मैंने भी किए थे, खिचड़ी भेजी थी।
अच्छा।
और तकरीबन मुझे याद है कि 16 या 25 के करीब बकरों की खालें उतारी थी।
अच्छा।
और तकरीबन 8-10 बकरे जो है ना हमने इसके गोश्त भी बनाए थे।
क्या बात।
क्योंकि फिर वो हम लेकर आए थे, हमारे यहाँ जो ना लंगर होता था, मीर हसन का जो काफिला होता था ना, तो रोज़ाना हमारा
बकरे का लंगर
नहीं, जो भी गोश्त
होता था
तो लंगर पकता था। और बाकायदा हरम शरीफ में के बाहर जो है ना दस्तरखान भी लगता था।
कोई खास डिश होती थी?
नहीं, जो पकता है आमतौर पे कौरमा और बिरयानी। अच्छा। और इस तरह की चीजें।
अच्छा, ये कौरमा कहाँ पक रहा है?
मक्के में। माशाल्लाह,
बरकतें देखें।
अच्छा आई साहब, एक तो आप मेमन स्पीकिंग है ना, मदर टंग आपकी मेमनी है, तो आप एक तो मेमनी में है ना, पहले तो अगर क्योंकि मेमन भी देखते हैं, सिंधी भी देखते हैं, सभी देखते हैं ना मदनी चैनल, तो एक तो आप है ना मेमनी में अगर ईद मुबारक कह दें डायरेक्ट, तो आपकी जबान में भी जाएगा तो उनके दिल जो ही हो जाएगी इंशाल्लाह।
मदनी चैनल या जितना भी नाजरीन है, मेरी तरफ से बदन के बकर ईद मुबारक, अल्लाह पाक बदन के आइंदा साल ये वक्त जो है हज में नसीब करे, अल्लाह बदन के हज नसीब करे, अल्लाह पाक सेहत सलामती दिए, आफियत दिए, नहीं दिए जी बदन के पा बदन के बरकत अता फरमाए।
भाई साहब, आपका पूरा नाम क्या है?
मेरा नाम मोहम्मद अमीन अत्तारी।
आपके वालिद साहब का पूरा नाम क्या है?
अब्दुल सत्तार अत्तारी।
आपके दादा का पूरा नाम क्या है?
अली मोहम्मद अत्तारी।
आपके परदादा का पूरा नाम?
मोहम्मद अत्तारी।
आपके लकड़ दादा का पूरा नाम क्या है?
हाशिम है खान, हाशिम अत्तारी।
और उनके वालिद का पूरा नाम क्या है?
यहाँ तक याद है।
अच्छा ठीक है, लेकिन देखे लकड़ दादा तक बताया है। आपके पूरा नाम क्या है?
मोहम्मद यूसुफ अत्तारी।
वालिद साहब का?
मोहम्मद अहमद।
दादा का?
मोहम्मद हनीफ।
परदादा का?
अब्दुल गफूर।
लकड़ दादा का?
नहीं।
ये भी एक कमाल है कि ना इस उम्र में भी है ना लोगों को दादा तक के नाम याद नहीं है, न्यू जनरेशन को, तो ये भी याद रखने चाहे हमने बुजुर्ग हैं लेकिन अपने बुजुर्गों को याद।
वाक्या सुना दूं? ये याद याद पर एक वाक्या
हाजी अमीन आए और मुमकिन नहीं है।
एक बच्चे ने अपने अबू से कहा कि अबू परदादा की कब्र पे जाना है।
अल्लाह।
अच्छा,
तो अब उसके अबू बड़े हैरान हो गए, परदादा की कब्र? ठीक है चलेंगे। तो खैर एक दो हफ्तों के बाद छुट्टी वाले दिन ही अपने बच्चे को लेकर गया, अब ढूंढ 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 तो परदादा की कब्र ही नहीं मिली, तो बड़े हैरान हो गया, बैठ गया, बच्चा भी बैठ गया, अब्बा भी थक के बैठ गया। तो अब्बू बड़े हैरान थे कि आखिर इसको परदादा की कब्र का क्या शौक हुआ जाने का। तो उसने कहा कि अब्बू परदादा से तो हमारा रिश्ता है। तो कहा खूनी रिश्ता है, लेकिन हमें इनकी कब्र नहीं मिली और हमें पता ही नहीं है कब्र कहाँ इनकी, लेकिन गरीब नवाज की कब्र कहाँ है?
अल्लाह।
हिंद में
कहाँ है? कौन से शहर में?
अजमेर।
अजमेर शरीफ।
दाता साहब?
दाता साहब लाहौर में।
अब्दुल्ला शाह गाजी?
कराची में।
लाल शाहबाज कलंदर?
सेवन शरीफ में।
तो गरीब नवाज से रिश्तेदारी आपके,
मतलब ब्लड रिलेशन?
नहीं नहीं नहीं
नहीं,
यूँ रिश्तेदारी
नहीं।
और दाता साहब के खानदान वाले?
नहीं।
आला हजरत की कहाँ है कब्र?
बरेली
शरीफ के खानदान वाले आप?
नहीं।
तो ये नाम कैसे याद हो गए? यानी इनकी मजार क्यों याद रह गए? तो पता चला कि जो कुछ काम करते हैं ना उन्हीं को याद रखा जाता है।
वाह वाह वाह, क्या बात है।
तो ये मुझे आपकी वो बातों से मैंने कहा चले वाक्या सुना दूंगा आपको। तो ये अल्लाह पाक हमसे कोई ऐसा काम ले कि वो कहते ना कि अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत फरमाता है तो फरिश्तों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालता है, फिर लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है, यहाँ तक कि चरिंद परिंद जानवर तक के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डालता है। तो काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह अमल की तौफीक दे।
मदनी चैनल के नाजरीन, जो काम करेगा वो याद रखा जाएगा। अब वो क्या काम करेगा और किस तरह याद रखा जाएगा ये फैसला आप पे छोड़ते हैं हम ना। आप अच्छा काम करेंगे, आप दीनी काम करेंगे, आप वो काम करेंगे जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा शामिल होगी, तो आपको उस अंदाज से याद किया जाएगा जैसे हमारे हाजी साहब ने फरमाया, ख्वाजा साहब को जानते हो, दाता साहब को जानते हो। ये एक ऐसा एक आपको जो ना वो रास्ता दिखा दिया जी साहब ने कि अब फैसला आपके ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। अपनी जिंदगी में वो काम करेंगे कि हम जब नहीं होंगे तो कोई हमें याद करे कि ये वो इस्लामी भाई था जो पांचों वक्त पहले सफ में होता था, ये वो इस्लामी भाई था जो काफिलों का मुसाफिर हुआ करता था, अच्छी बात किया करता था। अलगर्ज मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं ईद स्पेशल। आपने क्या देखा है? तो हमने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को राज़ी करना हमारे लिए ये एक ऐसा अमल है कि जिसके बाद इंशाल्लाह मरने के बाद भी हमें याद रखा जाएगा।
जी माशाल्लाह। और अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है वो हम अभी नहीं बताएं,
अभी नहीं बताएं,
नेक्स्ट सेगमेंट जब शुरू करेंगे, जब बताएंगे। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा,
सल्लल्लाहु
तआला अला मुहम्मद।
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم।
प्रोग्राम है ईद स्पेशल। आपने क्या देखा? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने मुबल्लिगीन से बात करेंगे कि इन्होंने ईद में क्या क्या देखा।
अच्छा हुसैनी भाई, एक चीज बताऊं आपको मैं कि हम हर सेगमेंट से पहले ना सेगमेंट को अनाउंस करते हैं।
ठीक।
अच्छा, लास्ट सेगमेंट जो हमारा था वो था, उसमें हमने जो कंप्लीट किया सेगमेंट, उसके बाद जो है ना हमने नेक्स्ट सेगमेंट अनाउंस करना होता है, लेकिन हम सस्पेंस छोड़ के चले जाते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। तो हमारा जो आज का सेगमेंट है ना वो है दावत। सबसे पहले हुसैनी भाई इंट्रोडक्शन ले लें।
बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि हमारे कदीम मुबल्लिग पुराने बुजुर्ग मुबल्लिग, आपका नाम?
मोहम्मद हाशिम अत्तारी।
मोहम्मद हाशिम अत्तारी, आपकी उम्र?
62 प्लस।
माशाल्लाह। आपका नाम?
मोहम्मद नासिर अत्तारी।
आपकी उम्र?
तकरीबन 46।
माशाल्लाह।
आपका नाम बताइए।
मोहम्मद आरिफ अत्तारी।
मोहम्मद आरिफ अत्तारी साहब, आपकी उम्र कितनी है?
67।
माशाल्लाह। आपका नाम क्या है अमजद भाई?
मेरा नाम है अमजद अली कादरी अत्तारी और मैं 60 प्लस हूँ।
अच्छा, आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा आपका नाम क्या है अमजद भाई। असल में मैं इनका नाम जानता हूँ तो इसीलिए मैंने थोड़ा पहले से कह दिया अमजद भाई, लेकिन इनका पूरा नाम है अमजद अली कादरी अत्तारी।
माशाल्लाह।
अच्छा, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एक और चीज पूछ लेते हैं।
जी।
आपकी मदर टंग क्या है?
मेमन।
मेमन है आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको उर्दू में मुबारकबाद देता हूँ, ईद मुबारक मेरी तरफ से, क्योंकि ये ईद का मौका है और आज तीसरा दिन हो गया है, तो आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक।
आई के मित्रों से ईद मुबारक।
आई के। आपकी मदर टंग?
उर्दू स्पीकिंग।
उर्दू स्पीकिंग। तो आपको कौन सी जबान में मुबारकबाद दें?
उर्दू में
दें। उर्दू में दें। आप मुबारकबाद दें मेरी तरफ।
ईद मुबारक हो।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक।
खैर मुबारक हो, माशाल्लाह।
मुबारकबाद दें। मैं दूं ये दें?
जो भी
दें। मेरी तरफ से और
हुसैनी भाई की,
हुसैनी भाई की तरफ से आपको ईद मुबारक।
खैर मुबारक।
अच्छा, पंजाबी में आप कहेंगे ईद मुबारक, हमें कैसे कहेंगे?
हम पंजाबी में यूं कहेंगे कि तुसा ईद मुबारक हो।
तुसा ईद मुबारक हो।
तुसा भी ईद मुबारक हो।
खैर मुबारक।
माशाल्लाह। उर्दू स्पीकिंग है। मादरी जबान आपकी उर्दू है?
उर्दू है मेरी।
और कौमी जबान क्या है आपकी?
कौमी जबान भी उर्दू है।
अच्छा, कौमी जबान भी उर्दू है।
जी जी।
और पिदरी जबान क्या आपकी?
वो भी उर्दू है।
पिदरी जबान?
जी जी जी।
अच्छा, आपकी मादरी जबान?
इनको।
इनको। आपकी पिदरी जबान?
कौमी जबान उर्दू।
पिदरी जबान?
इनको।
इनको। हाँ, क्यों बाज़ कहते हैं ना वालिद पठान होते हैं तो वालिदा पंजाबी होती हैं, तो
नहीं,
इस तरह
सब एक।
असल में पिदर सुना है ना आपने, पिदर तो बाप को कहते हैं।
आप बताइए, आप बताइए कि आपकी कौमी जबान कौन सी?
हमारी कौमी जबान जो उर्दू है।
माशाल्लाह।
ठीक है, और जाहिर बात है ही कौमी जबान उर्दू।
आपकी कौमी जबान तो उर्दू है, मादरी जबान?
मादरी जबान भी उर्दू।
जबान भी?
पिदरी जबान भी उर्दू है।
अच्छा हुसैनी भाई, असल में ईद का दिन है
जी, जी।
तो थोड़ा सा जाहिर है गेट टुगेदर की है, हमने दावत सेगमेंट का नाम है, तो मैं दावत तो जाहिर होती रहती है, खाते हैं तो कुछ है ना, इस तरह खट्टी मीठी बातें भी हो जाए, फिर है ना दीन की बातें भी, हमारे बुजुर्ग हैं जाहिर हुसैनी भाई हैं, फिर इंशाल्लाह इस गेट टुगेदर में कुछ सीखने को भी मिलेगा,
कुछ ऐसी बातें सुनेंगे सीखेंगे हमें, जिसमें दीनी भी फायदा हो
جسمانی بھی فائدہ ہو
جی جی
اور اخروی بھی فائدہ ہو
انشاءاللہ.
یعنی کہ ہم جو چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے آپ نے اپنے طور پر اس کے جوابات دینے. مثال کے طور پہ عید پر خاندانی تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے کے بزرگ کیا طریقہ اپناتے تھے؟ ٹھیک, آپ کے گھر میں عید کے دن سب سے پہلے کون سے پکوان تیار ہوتے تھے؟ اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ گوشت پکانے کے لیے لکڑی, کوئلہ یا چولہا استعمال کرتے تھے, اس کا ذائقہ آج سے مختلف ہوتا تھا.
جی جی. اچھا, اب تین سوال انہوں نے تھوڑا سا ریکال کرنے کے لیے حسینی بھائی نے کر لیے. جیسے پہلا سوال انہوں نے کیا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے
شہزاد بھائی؟ اس سلسلے میں میں تو ایک ہمارے بزرگ کا واقعہ بتاؤں گا.
اچھا,
ہمارے قاری عبدالرزاق مرحوم ہیں, بہت اچھے اخلاق کے, بہت ملنسار, بہت ٹھنڈے دل کے.
ماشاءاللہ.
ان کے بارے میں مجھے بتایا کہ یوں بڑے اچھے ہیں اور جب خاندان میں ان کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے بھائی کے گھر ہو, چاہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو یا بھائی بہن میں جھگڑا ہو, سلے کے لیے انہیں کو بلاتے تھے.
اچھا,
بزرگ تھے ماشاءاللہ. اور بتانے والے مجھے بتاتے ہیں کہ جب فیصلے کا ٹائم آتا وہ بیٹھتے ہیں نا, کسی کی مجال نہیں تھی کچھ بول سکے.
اچھا,
سب کی سنتے تھے اور پھر فیصلہ دے دیا, جو فیصلہ دے دیا نا اس پہ عمل ہونا ہے.
تو یہ ان کی محبت کی وجہ سے تھا, ان کی روب کی وجہ سے تھا. جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پہلے ان بزرگوں میں ایسی کیا کوالٹی ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی بھی جرگے میں یا گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھ جائیں تو ان کی بات سنی جاتی تھی؟
اصل میں پہلے زمانے میں نا بزرگوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی.
اچھا,
ان کی تعظیم ہوتی تھی اور ان کو اہمیت دی جاتی تھی کہ ان کے پاس 50 سال کا, 60 سال کا, 70 سال کا تجربہ ہے اور ہم تو 20-25 سال کے, ہمارے پاس نہیں ہے. ان کو یہ اویئرنیس تھی کہ نہیں, ان کے پاس تجربہ ہے اور یہ صحیح فیصلہ کریں گے.
اچھا, اور لوگ ایکسیپٹ
بھی کرتے تھے اور یہ مطلب کہ فروٹفل بھی ہوتا تھا.
ماشاءاللہ,
ان کے فیصلے بھی مطلب مضبوط ہوتے تھے.
تو کیا ایسی بات بھی ہوتی تھی کہ وہ بزرگوں کا احترام, تعظیم, ادب وہ بھی ان کے نزدیک ہوتا تھا کوئی ایسی چیز؟
میں نے آپ کو نا قاری عبدالرزاق صاحب کے بارے میں بتایا کہ اسی مجال نہیں ہوتی خاندان میں سے کچھ بول سکے.
تو ان کے اپنے شخصی روب کی وجہ سے؟
نہیں, روب کے ساتھ ساتھ عزت بھی تھی.
عزت,
ایک عزت, تعظیم تھی.
دادا ہے یا نانا ہے, بڑے ہمارے بزرگ ہیں, تو اس وجہ سے وہ تعظیم کرتے تھے. حدیث پاک کے حوالے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی تلقین فرمائی اور انداز کیا تھا. جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے گا. تو یہ مل جل کر رہنے کے لیے سمجھایا گیا کہ ہم کسی کے اوپر ایسا کوئی شخصی دباؤ بھی نہ ڈالیں, نہ ان کی کسی بات کو رد کریں. ہاں ٹھیک ہے, شریعت کے دائرے میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے, ورنہ بزرگ کا, بزرگ جو ہمارے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ پورا خاندان ایک پنچ کی طرح رہے, کسی کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, نفرت نہ ہو, لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو.
یہی اہمیت تھی نا کہ جن کی وجہ سے نا جب اس طرح کے معاملات, لڑائی جھگڑوں والے, تلخیوں کے معاملات ہوتے تھے تو پھر اس کو سولو بھی کر لیا جاتا تھا, ان کو ویلیو دی جاتی تھی نا. ہاشم بھائی جی,
آپ کے گھر میں عید کے دن سب سے پہلے کون سا پکوان تیار ہوتا تھا؟
سب سے پہلے کلیجی تیار ہوتی.
ہائے ہائے, کلیجی.
اچھا, میٹھی عید میں کون سی چیز تیار ہوتی تھی؟
میٹھی عید میں شیر خورمہ.
اب نہیں ہوتا؟
اب بھی ہوتا ہے.
اب بھی ہوتا ہے,
بالکل.
پہلے بھی شیر خورمہ ہوتا تھا, اب بھی شیر خورمہ ہوتا ہے.
شیر خورمہ ہوتا تھا, اب بھی شیر خورمہ ہوتا.
اور بقرعید میں؟
بقرعید میں کلیجی جانور کی, اگر قربانی اگر اتفاقاً کبھی نہیں کر سکے تو پھر جو آ جائے.
تو پہلے بھی کلیجی, اب بھی کلیجی, اب کوئی دل گردہ پھیپڑا وغیرہ نہیں
کہ دیکھے جانور
جو ہونا چاہیے نا,
سب سے پہلے کلیجی پکائی جاتی ہے.
آتے وقت آپ نے اچھی نیت کیا کی تھی؟
وہ نہیں کی تھی نا, انہوں نے اس لیے بتا نہیں رہے. دیکھیں
یار شہزاد بھائی, یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ یار آپ نے دعوت کا اہتمام کرا ہوا ہے, جیسے ادھر کلیجی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, سب چیز کی باتیں ہو رہی ہیں, تو دعوت کا اہتمام جو نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ.
دیکھیں سیگمنٹ کا نام دعوت ہے. اچھا اب ان کے یہ بھی خوش ہو رہے ہیں,
منہ میں پانی بھی آ رہا
ہے. سیگمنٹ کا نام دعوت ہے, اب ضروری تھوڑی ہے کہ دعوت اس میں کھانا ہی ہو. چائے پیے آپ نے؟
نہیں چائے پیے, مگر
دعوت میں چائے نہیں ہو سکتی.
نہیں کیوں نہیں ہو سکتی,
سنگل ڈش والا سنا آپ نے, کوئی ضروری تھوڑی ہے بوفے لگے ہوئے
تھے. ریفریشمنٹ کا کر لیجئے.
تو پہلے زمانے میں کیا ایسے گیٹ ٹوگیدر میں اتنے دعوتیں, مطلب اتنے کھانے ہوتے تھے کیا؟
جی ہوتے تھے, اللہ کا شکر ہے. ہم لوگ اگر 50 ایئر بیک اگر ہو جاتے ہیں ہم لوگ, تو وہاں پہ تو ماشاء اللہ ایک سے ایک ہم لوگوں ڈشیں ملتی تھی کھانے کو.
50 ایئر بیک ہو کے آپ کتنے سال کے رہ جائیں گے؟
10 ایئرس, 10 سال کا.
10 साल के
जी। अभी आपकी उम्र कितनी है?
60+
60 में यानी कि 50+
माइनस कर दे तो 10 इयर्स।
10 इयर्स, 10 इयर्स की बातें याद है आपको?
जी जी, अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा, 10 इयर्स में जैसे आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ खाने वगैरह पकते थे, मुख्तलिफ डिशें पकती थी।
जी जी जी।
तो वो किस चीज में पकती थी?
जैसे आपने बोला कि चूल्हे में, जाहिर है उस टाइम
जो ना होता था
चूल्हा, उस टाइम हम लोग के पास जो होता था, जाहिर है गैस का कोई कंसेप्ट था ही नहीं बिल्कुल भी।
अच्छा।
तो हम लोग को याद है अच्छी तरीके से, वो हम लोग के पास चूल्हा होता था, बत्तियों वाला चूल्हा होता था।
उससे पहले?
उससे पहले वो स्टोव टाइप का जो होता
पहले?
है उससे पहले तो जाहिर बात है मैं इतना बैग नहीं हो सकता, इसलिए कि उसका नहीं पता। फिर मुझे
फिर आपका बिल्कुल बचपना शुरू हो जाएगा।
याद भी नहीं रहेगा।
तो जहां तक ये याद है कि तो वो बत्तियों वाला चूल्हा होता था। हुसैनी भाई आपको भी याद होगा, आशिफ भाई भी बैठे हुए माशाल्लाह, हमारे आरिफ भाई भी बैठे हुए, नासिर भाई भी बैठे हुए और आप भी बैठे हुए शहजाद भाई।
बुजुर्गों से सुना है मैंने, तो घासलेट वाला चूल्हा होता था, मैंने देखा भी है।
वो घासलेट या मिट्टी का तेल?
मिट्टी के तेल का
नहीं, घासलेट ना,
केरोसिन ऑयल,
केरोसिन या मिट्टी का तेल।
अच्छा, मिट्टी का तेल भी बोलते
उसके?
आपकी जबान में घासलेट बोलते हैं?
जी जी जी।
तो आपकी जबान में क्या बोलते हैं केरोसिन ऑयल को?
मिट्टी का तेल।
मिट्टी का तेल तो ये क्या मिट्टी से निकलता है, क्या है सीन क्या है?
बिल्कुल मिट्टी से निकलता है, पेट्रोल भी मिट्टी से निकलता है।
अच्छा, तो उसको मिट्टी का तेल क्यों नहीं बोलते?
उसमें से रिफाइन होके जो है मिट्टी का तेल भी अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है।
पेट्रोल भी अगर मिट्टी से निकलता है तो पेट्रोल को मिट्टी का तेल क्यों नहीं कहते, इसको मिट्टी का तेल क्यों कहते?
उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, पेट्रोल बन जाता है।
आरिफ भाई, आपके जमाने में तो शायद कुछ और होता होगा पकाने का अंदाज सिस्टम, या आपके वालदा के जमाने में, घर वालों के जमाने में?
लकड़ी पे।
अच्छा, वहाँ पे लकड़ी पे?
लकड़ी,
माशाल्लाह,
लकड़ी पे पकाते थे और बाकायदा जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाते थे।
अच्छा, खुद काट के लाते?
खुद काट के लाते।
वाह।
खुद लाते थे, लकड़ियाँ रखते थे, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी भी बहुत होती है।
अच्छा अच्छा।
तो सर्दियों में भी लकड़ी का इस्तेमाल।
आपका इलाका कौन सा?
एप्टाबाद,
मानसेरा। अच्छा, तो वहाँ यानी कि आपने ये देखा है कि आपके घर में कोयला या फिर लकड़ी
जलाने के बाद कोला भी हमारे यहाँ बन
इस्तेमाल में आ जाता था,
आ जाता था।
क्या बात है। तो अच्छा, उसमें जायके में कोई फर्क पड़ता था?
जायका
जैसे गैस में पका हुआ खाना या फिर लकड़ी में पका हुआ खाना, कोयले में पका हुआ खाना, तो ऐसा कोई जायके का?
लकड़ी का खाना पका हुआ बहुत जायकेदार होता,
और उसकी रोटी,
रोटी भी लकड़ी।
आपके यहाँ तो रोटी भी माशाल्लाह
बड़ी होती थी यार, बड़ा तवा होता था।
हमारे यहाँ तो छोटी सी रोटी और डबल रोटियाँ होती।
इतनी बड़ी रोटी कितने लोग खाते थे?
बस वो कोई एक खाता था, कोई दो मिल के।
इतनी बड़ी रोटी एक बंदा खा लेता था?
हाँ।
अच्छा,
हाँ,
एक रोटी दो बंदे,
मतलब रोटी बड़ी होती थी।
सही,
रोटी बड़ी होती।
तो आजकल की जो रोटियां हैं
ये तो छोटी हैं,
तो इसको ये मिलाए तो कितनी बन जाए?
तो इस तरह 3 रोटियां बन जाएंगी।
आप जरा हाथ से इशारा करके बताएं कितनी बड़ी रोटी होती थी?
इतनी बड़ी होती थी।
अभी भी इतनी बड़ी है?
हाँ, पूरी वो मिट्टी का, मिट्टी की तवा होता था।
अच्छा, हमारे
मिट्टी का बना हुआ।
अच्छा,
मिट्टी के तवे के ऊपर वो रोटी पकती थी।
क्या बात।
अच्छा।
आजकल तो ये लोहे का आ गया ना, तो वो स्टेम यो मिट्टी का बनाया हुआ था तवा, उसके ऊपर रोटी पकती थी।
अच्छा, अब आप देख मौजूदा दौर में, लेटेस्ट दौर में आप देख रहे होंगे कि ना कोयला कढ़ाई, कोयला बिरयानी, कोयला कबाब, अच्छा लाइव मटका बिरयानी। अच्छा, वो मटका बिरयानी भी जो है ना, वो मट्टी के बर्तन में अच्छा मट्टी के बर्तन में चाय, और वो कोयले पे बन रही है। अभी ये लेटेस्ट चल रहा है, और ये इन्वेंशन ये पहले के दौर वाली रिटर्न हो रही है। कहते हैं ना कि तारीख अपने आप को दोहराती है।
अच्छा, इसमें एक बात ये भी है ना कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह रहमान के अंदर, फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे, जो आम हम सुनते हैं चले आते हैं। तो कभी भी कोई ऐसी मामला आ जाए ज़िंदगी के अंदर, कोई ऐसी तकलीफ परेशानी वाले मामला आ जाए, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी महरूम नहीं रहना चाहिए कि भाई ये क्या मेरे साथ हो रहा है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो लोगों ने ये वक्त भी गुजारे हुए।
अल्लाह ने हमें कितना मतलब कितनी नेमतें खिलाता पिलाता है, कितनी है ना, पहले का दौर हो या अभी का दौर हो, अल्लाह का जो भी खाएं, कम खाएं, ज़्यादा खाएं, सब्ज़ी खाएं या गोश्त खाएं, ठीक है ना, आज दावत का प्रोग्राम है तो इंशाल्लाह कुछ उम्मीद है कि कुछ यहाँ पे आ जाएगा। हमारे मेन मेज़बान तो ये हैं, लेकिन दावत इनकी तरफ से नहीं है, मेज़बान की तरफ से वैसे दावत होती है, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और क्योंकि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी।
खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में जो तेरी, हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में जो तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना।
बहुत प्यारा कलाम पढ़ा।
अच्छा एक मेरा सवाल है कि
आप सवाल करें, इतना गुस्से में क्यों कर रहे हैं, अभी खाएंगे हम तो आप तो प्यार, ईद का दिन है, थोड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते थोड़ा प्यार से सवाल करें ना। अभी
मेरा एक सवाल है कि लोग अक्सर खाना खाते टाइम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल जाते हैं, तो उस हाल में क्या करना चाहिए?
अगर खाना खाने के पहले हम बिस्मिल्लाह शरीफ भूल जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या करना चाहिए? जो शरीयत ने हमें रास्ता बताया, तरीका बताया, आसान रास्ता जो हमें बताया कि जब भी आपको याद आ जाए तो उस वक्त आपने बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा ये पढ़ लेना।
अगर ये पता है कहाँ होता होगा
जी?
बुफे सिस्टम में। अच्छा। दावतें होती
है तो ये तो दावतें हैं,
बस इंतजार में बैठे होते हैं कि ढक्कन खुलने की आवाज आनी चाहिए।
सही,
ये दौड़े ये भरा तो इसमें भूल जाते होंगे खाने में।
अच्छा एक बात मैं और इसमें ऐड करता हूँ कि हमारे यहाँ दावतें होती हैं घरों के अंदर, जैसे हमारे अजीज भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और ख्वातीन भी आती हैं, तो ऐसी सूरत में थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि जो महरम है गैर महरम है तो घर के जो बड़े अफराद हैं उनको पहले से माइंड बना लेना चाहिए। और माहौल अच्छे माहौल की बरकत है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत समय के मदनी माहौल में इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़वातीन होती है बापर्दा उनको फिर अलहदा रूम में बिठाया जाता है, वो अपने तौर पर जो ख़वातीन आपस में डिस्कस करती हैं, क्योंकि जब इवेंट्स आते हैं शादी ब्याह का इवेंट्स आ गया या इसी तरीके से ईद के मौाक़े आ जाते हैं तो इन मौाक़ों पर भी जो ना लोग बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं, तो शरीयत को फॉलो करना है, शरीयत को हमें पेशा नज़र रखना है कि यहाँ पर कोई बेपर्दगी भी ना होनी चाहिए। हाँ जो महरम है सो महरम है, बाकी आपस में जैसे एक दस्तरखान बिछा दिया, कज़न्स भी बैठे हुए हैं, ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, तो ऐसा ना किया जाए, अल्लाह की नाफरमानी ना की।
अच्छा अभी आज तो इसका तीसरा दिन है ना, अभी आपको मालूम है कि ना फ्रिज कुछ भरे हुए होंगे, कुछ भरे जा चुके होंगे, और बांटने के बाद भी है ना बाज़ औक़ात है ना लोगों के पास इतना वाफिर मिकदार में गोश्त होता है, अपना भी हिस्सा होता है, फिर बाकी लोग भी दे रहे ही होते हैं, ज़ाहिर रिश्तेदार जिनके कुर्बानी होते हैं वहाँ पे भी गोश्त आता है, तो डीप फ्रीज़र स्पेशली गर्मियों में नया भी लिया जाता है, कोई पुराना होता है उसको भी भर दिया, वो वाला गोश्त है ना अब है ना कुछ दिन बाद ईद का तीसरा दिन जो है वो आपको मालूम है जुमा है, जैसे आज ईद का तीसरा दिन है जुमा, कल क्या है हफ्ता, इसके बाद इतवार, ये 5 दिन छुट्टियाँ हैं ईद के पहले दिन से, 5 दिन 5 छुट्टियां, सैटरडे को भी बारबेक्यू का फार्म हाउस का,
मैं आपका इशारा समझ गया कि वो लोग घूमने के लिए निकल जाएंगे,
फार्म हाउस का प्रोग्राम बनेगा, हट का प्रोग्राम बनेगा, उसमें बारबेक्यू होगा, बकराईद का गोश्त भी होगा,
उसके बाद नाच गान की प्ले भी होगी, म्यूजिक भी बच रहा
है, ये दावत अब है ना, क्या दावत सिर्फ है ना जरूरी है कि ना कुछ है ना गुनाहों के काम करते हुए ही हो?
नहीं, ऐसा नहीं होना
दावत
चाहिए।
दावत में सवाब भी कमा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने दावत को जो भी है उसको शरीयत का रंग भी दे सकते हैं, शरीयत के दायरे में रहकर अपनी वो दावत कर सकते हैं।
हमारी दावत भी आज
अल्हम्दुलिल्लाह। मेन मसला क्या होता है कि जब आदमी कहते ना फ्री हो जाता ना हर काम में, कि भाई कुछ भी नहीं होता, क्या है भाई ये तो कज़न है, ये तो ये है, ये तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या कोई सी साइड पर चले जाते हैं, कोई फार्म हाउस चले जाते हैं और ये गोश्त भी साथ लेकर जाते हैं या कहीं से पकवा लिया जाता है, फिर वहाँ पर जाकर बिल्कुल यानी आप इसे बाहर निकल जाते
हैं। आप पुराने जमाने के आदमी हो सैनी भाई, सॉरी टू से,
देखिए
क्या मतलब एंजॉय भी ना करें, एंजॉय भी ना करें।
शरीयत पुराने जमाने के लोगों के लिए भी है, शरीयत इस दौर के लोगों के लिए भी, आइंदा जो आएंगे उनके लिए भी है कि हम शरीयत के पाबंद हैं। हमें कभी भी अपनी तकारीब के अंदर अल्लाह की नाफरमानी वाला काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो शादी ब्याह के महफिल हो, चाहे वो हम जैसे फैमिली मेम्बर जाते हैं घूमने, फिर कज़न लोगों को भी दावत देते हैं कि चलो आप भी चलना, आप भी चलना, आप भी चलना, तो वहाँ जो ना बिल्कुल ही
बेबाक ना हो,
बेबाक हो जाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं के पसंदीदा गोश्त,
एक एक जुमला,
गाय का, बकरा या ऊंट?
बकरा, इन मानों में।
आप मेमन?
यस
माशाल्लाह, मेमन फैमिली में यानी के
बकरा चलता है,
बकरे का गोश्त ज्यादा पसंद किया जाता है।
खैर महंगाई के हिसाब से वो भी बेचारे अब आ गए हैं गाय के गोश्त पे, लेकिन जनरली बकरा, और मैं अपने लिए इसलिए पसंद करूंगा कि परहेज।
परहेज, अच्छा अच्छा, मतलब बड़े का गोश्त ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है।
बकरे का गोश्त ज्यादा पसंद किया जाता है
हमारे यहाँ। महंगाई के दौर में ये बुजुर्ग बकरे के गोश्त
अभी भी खा रहे हैं? ऐसे बकरा
नहीं, बहुत कम होता है खाना भी, तो बीफ और चिकन इस्तेमाल होती है ज्यादा।
अच्छा, बकरे का गोश्त कम ही होता है,
पसंदीदा
पसंद वही किया जाता है आपके यहाँ?
हम लोग तो ज्यादातर जो है ना वो बीफ का ही गोश्त ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं।
अच्छा जी, तो आप क्या दिल्ली वाले हैं?
जी जी दिल्ली वाले हम लोग जी।
आप फरमाए।
हमारे यहाँ ईद वाले दिन चपली कबाब
पसंदीदा गोश्त, पसंदीदा गोश्त
गाय का गोश्त,
गाय का गोश्त।
हाँ गाय,
कौन सा, दस्ती या पसली?
बस ऐसे में जो भी आ गए।
अच्छा, जो घर में आ गया वो, वो पसंदीदा गोश्त है,
बस उसी का बनाना।
आपकी ईद की सबसे पहली याद क्या है, प्यारी सी याद,
एक लफ्ज में बताएं,
कोई एक लफ्ज बताएं, कोई सी कोई याद आती है आपको जहन में कोई चीज कि ईद के दिन यूं हो गया था?
नहीं, इसमें तो ये है कि सबको जमा किया जाता है, आते हैं, बैठते
हैं, ये याद है,
खाना खाते
हैं, ये तो नहीं है।
ऐसी वो याद हो ना कि जो हमें लगे कि वाकई ये भी कोई याद है। आप बताएं चले
एक लफ्ज में ईद की प्यारी सी याद।
प्यारी सी बस याद यही है कि बस खाने की याद आती है फिर ईद के पहले दिन हमें।
अच्छा, खाने की याद आती है,
खाने की याद आती है
जी। नासिर भाई, इन्होंने एक लफ्ज तो नहीं बताया लेकिन खाने की याद बताया।
कि प्यारी सी याद ये है कि जब वाली साहब हुआ करते थे तो उनकी शफकतें होती थी, उससे बस उनकी याद होती है।
अच्छा, प्यारी सी याद में प्यारों की याद,
प्यारों की याद।
आशिम भाई,
यही कि ईद के मौके पर बिछड़े हुओं की बड़ी याद आती है
कि
पिछली ईद को हमारे साथ थे आज नहीं है।
मैं अर्ज करूं
जी,
कपड़े सिलाने के लिए दिए थे, दर्जी की दुकान ही बंद हो गई।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग याद है और ये याद है ना काफी दिनों तक रहती है, बल्कि भूल ही नहीं जाती। हाँ, ये
दूसरा अब्बा जो ना बोलते थे कसाई के हवाले से
जी जी,
और कसाई अगर आगे पीछे हो गया तो फिर हमारी शबद आ जाती थी। अच्छा, जलाल के अंदर।
अच्छा, अब हमारे तकरीबन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और है ना याद से हम अब जाते जाते एक्सट्रो पे जाने से पहले याद से थोड़ा सा एक बात और याद आ रही है तो वो थोड़ी सी याद कर लेते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट है दावत पे, क्योंकि दावत है तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आशिम भाई माइक लीजिएगा, देखते हैं याद से इनको कितना याद है ना, बुजुर्गों की याददाश्त का इम्तिहान है।
बेशक।
आशिम भाई आपका पूरा नाम?
मोहम्मद हाशिम अत्तारी।
आपके वालिद साहब का पूरा नाम?
अब्दुल अजीज।
आपके दादा का पूरा नाम?
हाजी मोहम्मद।
आपके परदादा का पूरा नाम?
हाशिम।
आपके हाशिम भी परदादा का
जी
नाम?
जी जी, उनका नाम।
अच्छा, और आपके लकड़ दादा का पूरा नाम?
वो नहीं पता, ये भी मालूमात करके मैंने याद किया है।
अच्छा, नासिर भाई आपका पूरा नाम?
मोहम्मद नासिर अत्तारी।
आपके वाले साहब का पूरा नाम?
मोहम्मद यूनुस अत्तारी।
आपके दादा का पूरा नाम?
अब्दुल रहमान।
आपके परदादा का पूरा नाम?
नहीं।
आपके लकड़ दादा का पूरा नाम?
नहीं
नहीं। आई जी, अमजद अली कादरी साहब याद से अभी देखते हैं ना आपकी याददाश्त और कितनी याद ताज़ा है आपके जहन में। जी आपका पूरा नाम?
मेरा नाम अमजद अली कादरी अत्तारी।
अच्छा आपके अब्बू का पूरा नाम?
असगर अली।
आपके दादा का पूरा नाम?
इमाम अली।
आपके परदादा का पूरा नाम?
आइडिया नहीं है मुझे।
आइडिया नहीं है, आइए थोड़ा नाम की है।
मोहम्मद आरिफ अत्तारी।
थोड़े
प्यो
का नाम?
सफीउल्ला।
थोड़े दादा का नाम?
नूर अहमद।
थोड़े परदादा का नाम?
दोस्त मोहम्मद।
थोड़े लकड़दादा का नाम?
बस
ऊपर दादा का नाम। आपके आपका पूरा नाम क्या है?
मेरा नाम मोहम्मद हुसैन।
अच्छा ये मोहम्मद हुसैन साहब जो है ना ये भी गुजराती है घांची हैं तो जैसे इनसे थोड़ा सा वो किया तो इनसे हम जरा गुजराती का टेस्ट देते हैं। तुम्हारा नाम उसे
तड़का लगाते
हैं। देखिए दावत है और तड़के की बात नहीं और तड़के वाली बातें ना हो तो दावत का तो मजा नहीं आता ना। तो आपका पूरा नाम क्या है?
मारो नाम मोहम्मद हुसैन हुसैनी।
अच्छा इन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुमने गुजराती में बात करवी थी। तुम्हारा पूरा नाम?
मोहम्मद हुसैन हुसैनी।
તમારા વાલિદ નું પૂરું નામ?
હાજી અબ્દુલ કરીમ।
તમારા દાદા નું પૂરું નામ?
હાજી જુમ્મા।
તમારા પરદાદા નું પૂરું નામ?
હાજી ઉકા।
તમારા લકડ દાદા નું?
વીરા।
અને એના વાલિદ નું?
ઉંજા।
એના વાલિદ નું?
ઓ જુમ્મા।
અચ્છા 6-7 हो गए इना बात भी याद से?
बस काफी है
माशाल्लाह। ये मतलब ये अगर एक छोटा सा अगर मुकाबला कहें तो हुसैनी भाई जीत गए। अच्छा नाजरीन अब इख्तिताम के बिल्कुल लम्हात को करीब तरीन पहुँच चुके हैं और आपने क्या देखा है ईद स्पेशल सेकंड एपिसोड था यहीं तक था और इंशाल्लाह आपने क्या देखा है ये प्रोग्राम जो है मदनी चैनल पे आप देखते रहेंगे बुज़ुर्गों की ट्रांसमिशन में स्पेशली और प्राइम टाइम में भी इंशाल्लाह हो सकता है कि बुज़ुर्गों के मदनी। आपने क्या देखा है? हमने पहले भी ये प्रोग्राम दिखाए थे और आगे भी दिखाएंगे लेकिन ये ईद स्पेशल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि कबूल हो जाए।
बस अल्लाह पाक ने जो हमें मौका दिया एक साथ मिलजुल कर बैठने का, ये मदनी चैनल के नाज़रीन आपके लिए भी है कि आप भी मिलजुल कर बैठें, फालतू गुफ्तगू ना करें, कोई ऐसे मामलात बीच में ना लेकर आए बल्कि मोहब्बत भरी बातें लेकर आएँ, प्यार वाली बातें लेकर आएँ, उल्फत वाली बातें लेकर आएँ, किसी की गीबत ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी पर तोहमत ना हो, किसी पर इल्ज़ाम ना हो, बल्कि ऐसी प्यारी प्यारी बातें करें ताकि लोग आपसे सीखें हमसे सीखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अपनी बैठक में बैठे तो हमें ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे माहौल की बरकत अता फरमाए और अपनी जो भी नशस्त व बर्खास्त दावतें हैं अल्लाह पाक हमें उसको शरीयत के दायरे में रहकर मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु
तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ईद मुबारक ईद मुबारक सभी को ईद मुबारक।